कुछ देर बाद अन्वय आन्या को लेकर अपने महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा था। वहां से भव्य महल दिख रहा था। आन्या आंखें बड़ी बड़ी करके उस महल को देखते हुए बोली, तुम यहां रहते हो? मतलब ये सुंदर सा विशाल महल तुम्हारा है? और कुछ वक्त तक तुम्हें भी यहीं रहना है, पर ध्यान रहे यहां किसी के सामने ज्यादा बोलना नहीं है। याद रहे यहां सब मेरे तरह वैम्पायर हैं और तुम एक इंसान हो। उम्मीद करता हूं कि ये बात तुम ध्यान रखोगे। अन्वय ने उसे आगाह किया। आन्या ने झट से हामी भर दी। दरवाजा खुला तो सामने देखकर आन्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो जगह किसी और दुनिया जैसी लग रही थी। महल जितना सुंदर था उसके सामने का गार्डन भी उतना ही खूबसूरत था। आन्या की आंखों में चमक और लबों पर मुस्कान ठहर गई। अन्वय उसके साथ अंदर आने लगा। वहां मौजूद सभी वैम्पायरों की नजरें अन्वय के साथ आ रही आन्या पर टिकी हुई थीं। सभी हैरान परेशान से उन दोनों को देख रहे थे। उनके हैरानी के दो कारण थे। पहला, आन्या हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी इंसान, पहले कभी नहीं देखी थी। और दूसरा, आन्या के अंदर से इंसानी गंध आ रही थी और उनके भावी सम्राट एक मामूली सी लड़की का हाथ थामे चला आ रहा था, जिससे उनके मन में कई सवाल जन्म ले रहे थे। पर अन्वय के सामने वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अन्वय ने एक बार सबको घूर कर देखा तो सबने निगाहें झुका ली। आन्या बड़ी ही उत्सुकता के साथ सबको देख रही थी। सब यहां इंसानों जैसे ही लग रहे थे, बस थोड़े डरावने से लग रहे थे। आन्या ने सबको देखते हुए मन ही मन कहा, यहां तो सब इस खड़ूस के जैसे हैं, लगता है इनके यहां हंसना मना है। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं ना, मैं सबको हंसना सिखा कर ही रहूंगी। अन्वय महल के अंदर प्रवेश करके हॉल में पहुंचा तो उसके सामने अनामिका जी आकर खड़ी हो गई। अन्वय ने उन्हें सामने देखा तो उसके कदम रुक गए और उसने आन्या का हाथ छोड़ दिया। आन्या निगाहें घुमा घुमाकर उस महल को देख रही थी। अन्वय ने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, आन्या ने झट से उसकी तरफ निगाहें घुमाई। वो सामने खड़ी अनामिका जी को देख रहा था। आन्या ने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए सामने देखा, फिर अनामिका जी को देखने के बाद अन्वय को देखकर धीरे से बोली, ये तुम्हारी माँ है? तुम कुछ देर चुप रहोगी? अन्वय ने उसकी तरफ निगाहें घुमाकर उसे घूरते हुए कहा। आन्या मुंह पर उंगली रखकर खड़ी हो गई। अनामिका जी उन्हें ही देख रही थी। अन्वय ने अब उन्हें देखते हुए कहा, माँ वो ये। उसने इतना ही कहा था कि आन्या ने झट से मुंह पर से उंगली हटाई और फट से मुस्कुराकर बोली, मैं सही थी, आप इनकी माँ हैं। वो इतना कहकर जल्दी से उनके पैर छूने के लिए झुक गई। अनामिका जी की हैरत भरी निगाहें अन्वय की तरफ घूम गई। बेचारा अन्वय तो बुरा फंसा था। उसने खुद को सहज दिखाते हुए कहा, माँ ये मेरी दोस्त है। इस पर अभी अभी विक्रांत के खास आदमी राका ने हमला कर दिया था। शायद उन्हें शक हो गया है कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है। इनकी जान को खतरा है मेरी वजह से। ये और कहीं सुरक्षित नहीं रह सकती, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। एक बार मैं विक्रांत को खत्म करके पापा को आज़ाद करवा लूंगा, उसके बाद इन्हें वापस इनके घर छोड़ाऊंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, आन्या ने तुरंत ही विरोध किया। अन्वय आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। उसकी गहरी काली आंखें देखकर भी आन्या नहीं डरी और उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से बोली, मुझे घूर क्या रहे हो? मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम तो चले गए थे मुझे अकेला वहां छोड़कर, फिर भी मुझे मुश्किल में देखकर लौट आए ना। अब तुम खुद मुझे अपने साथ लाए हो तो अब से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। तुम यूं मुझे वापस भेजकर मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर कहीं भी, और मुझे घूरना बंद करो, जाकर किसी और को डराओ, मुझे तुमसे डर बिल्कुल नहीं लगता है। उसकी बात सुनकर महल के सभी लोग अन्वय के साथ ही उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं अन्वय ने गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाया, पर अनामिका जी बीच में आ गई और अन्वय को गुस्से से देखते हुए सख्त लहजे में बोली, ये हमारी अतिथि है, तो अपने गुस्से को काबू में रखिए और चुपचाप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। फिर उन्होंने आन्या को देखकर कहा, आप भी हमारे साथ चलिए। आन्या तो खुशी खुशी उनके साथ चल दी। अन्वय की मन मारकर उनके पीछे चला गया। कुछ ही देर बाद वे एक विशाल भव्य कक्ष में थे जो बेहद सुंदर लग रहा था। आन्या आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। रानी साहिबा वहां लगी बड़ी सी चेयर कर बैठ गईं और उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों भी बैठिए। आन्या ने आवाज सुनकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर बैठने के लिए आगे बढ़ी, पर लहंगे में उसका पैर फंस गया तो वो गिरने को हुई। पर अन्वय ने फुर्ती से उसके पास आते हुए उसकी बाह पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया और वापस ठीक से खड़ा करते हुए बोला, देख कर चला करो, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम हो और तुम मुझे हमेशा संभाल लोगे, कभी गिरने नहीं दोगे। आन्या ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अन्वय उसे गुस्से से घूरने लगा। अनामिका जी ने दोनों को देखा तो बैठने का इशारा करते हुए बोली, बैठिए। आवाज सुनकर आन्या ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर उनके सामने बैठ गई, तो अन्वय भी दूसरी कुर्सी पर जा बैठा। वो कुछ कहता उससे पहले ही अनामिका जी ने उसे देखा और हुक्म सुनाते हुए बोली,
आप बिल्कुल मौन रहेंगे, जब तक हम ना कहें अपना मुंह मत खोलिएगा। बेचारे अन्वय ने एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। अनामिका जी ने अब आनिया को देखकर सवाल किया, तो आप एक इंसान हैं?
जी,
उसने झट से जवाब दिया। उन्होंने दूसरा सवाल किया, हमारे बेटे को कब से और कैसे जानती हैं?
लगभग 2 महीने से जानती हूँ, इत्तेफाक से ट्रेन में मिले थे हम, उसके बाद हम 2 महीने साथ रहे हैं, तो मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ,
आनिया ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अन्वय ने घबराकर उसे देखा। वहीं अनामिका जी ने अन्वय को तिरछी नजरों से घूरते हुए आनिया से फिर से सवाल किया,
तो आप उनके साथ रहती थी?
जी, हम कुछ दिन पहले तक साथ में ही रहते थे।
एक ही घर में रहती थी आप उनके साथ?
अनामिका जी अब भी अन्वय को घूर रही थी, तो आनिया कुछ बकवास कहती उससे पहले ही वो बोल पड़ा,
माँ आप जैसा समझ रही हैं बात वैसी नहीं है,
वो इनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने साथ रहने दिया, पर हम अलग अलग सोते थे, वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच।
हाँ आंटी, ये ठीक कह रहे हैं, हम रूममेट की तरह रहते थे बस,
आनिया ने भी उसका समर्थन किया। तब जाकर अनामिका जी की नजरें अन्वय से हटकर उस पर आईं और उन्होंने गंभीरता से आगे सवाल किया,
आपने अभी बाहर कहा था कि आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, ऐसा क्यों कहा था आपने?
क्योंकि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ।
और आप ऐसा क्यों चाहती हैं?
क्योंकि मुझे ये पसंद है, मैं इनके साथ सेफ फील करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी इनके साथ बिताना चाहती हूँ,
आनिया ने बिना घबराए सब कह दिया।
उसकी बात सुनकर अन्वय ने घबरा कर सफाई दी,
माँ इसकी बात मत सुनिए, ये पागल है।
मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मैं पागल नहीं हूँ, दीवानी हो तुम्हारी।
आनिया ने तुरंत ही उसकी बात को नकारा।
उसकी बात सुनकर अन्वय एक बार फिर उसे घूरने लगा, क्योंकि इस पागल लड़की ने उसकी माँ के सामने सारी बातें कर दी थी।
अनामिका जी ने भी अन्वय को घूरते हुए कहा,
हमने आपसे कहा था कि आप अब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक हम आपको बोलने को ना कहें, आप हमारे हुक्म की अवहेलना कर रहे हैं।
उनकी बात सुनकर अन्वय सर झुकाकर बैठ गया।
अनामिका जी ने एक बार फिर आनिया को देखकर सवाल किया,
तो आप कहना चाहती हैं कि आपको हमारा बेटा पसंद है?
जी,
आप जानती हैं कि आप एक इंसान हैं और वो एक वैम्पायर?
जी,
फिर भी आप उन्हें पसंद करती हैं?
क्यों,
क्या एक इंसान एक वैम्पायर से प्यार नहीं कर सकती?
आप भी इसी धरती पर रहते हैं और इंसान भी यहीं रहते हैं, तो एक दूसरे से प्यार करने में क्या बुराई है?
कोई बुराई नहीं है, पर आमतौर पर इंसान वैम्पायर को देखकर डर जाते हैं, उनसे प्यार नहीं करते।
नहीं करते होंगे, पर मैं तो करती हूँ, आपको डर नहीं लगता?
सच कहूँ तो जब पहली बार पता चला था तो जान निकल गई थी मेरी, इतना डर लगा था मुझे, पर फिर मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। कितना मज़ा आएगा ना, मैं इंसान और वो वैम्पायर, क्या गजब की जोड़ी होगी हमारी, बिल्कुल इस दुनिया से जुदा। चलिए ये बताइए कि आपको तो अन्वय पसंद है, पर क्या उन्होंने कभी आपको कहा है कि वो भी आपको पसंद करते हैं?
नहीं, कहा तो नहीं है, पर मुझे पता है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, पर वो मेरे तरह बहादुर नहीं है तो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से डरते हैं।
जब उन्होंने कभी इजहार नहीं किया तो आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि अन्वय भी आपको पसंद करते हैं?
उनका सवाल सुनकर आनिया ने सहजता से जवाब दिया, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ, मैंने महसूस किया है। और पहले की बात छोड़िए, आज की बात ही देख लीजिए, मैं इनके लिए अपनी शादी से भाग कर आई, पर इन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया और मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। मैं बहुत डर गई थी, पता है पहले भी एक बार मैं जंगल में खो गई थी, तब मुझे एक वैम्पायर दिख गया था और मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। आज फिर कहीं कोई गंदा वैम्पायर मुझे ना मिल जाए और मेरा खून पीकर मुझे मार ना दे, यही सोचकर मुझे डर लग रहा था। पर मैं भी बहुत बहादुर और ज़िद्दी हूँ, मैंने कहा था मैं वहीं इनका इंतज़ार करूँगी, तो मैं वहाँ से हिली भी नहीं। फिर अचानक वहाँ धुआं फैल गया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो ये मेरे पास थे, मतलब मैं किसी मुश्किल में थी और इन्होंने मुझे बचाया था। अगर इन्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता होता तो मुझे क्यों बचाते, मर जाने देते ना, इनका पीछा छोड़ देती मैं, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे यहाँ लेकर आए। मतलब साफ है इन्हें भी मेरी परवाह है, बस पता नहीं क्यों मान नहीं रहे हैं।
आपके माँ बाप को पता है कि आप यहाँ हैं?
नहीं, मैं उन्हीं से तो भाग कर आई हूँ, उसने झट से कहा, तो उन्होंने फिर से सवाल किया,
क्यों?
आनिया ने अब अपने बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया और आगे बोली, ये मुझे छोड़कर चले गए, उसके बाद मेरे माँ बाप ने झूठा नाटक किया कि अब वो ज़बरदस्ती मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ये नहीं थे और कोई सहारा भी नहीं था मेरे पास, तो मैं उनके साथ चली गई, पर वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर से निहाल से मेरी शादी करवाने लगे, तो मैं मौका देखकर वहाँ से भागकर वापस जंगल में चली गई। मुझे पूरा विश्वास था कि ये वहाँ ज़रूर मिलेंगे और मेरा विश्वास जीत गया और मैं इनके पास पहुँच गई, पर ये मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। आप तो इनकी माँ हैं और ये आपकी बात मानते भी हैं, आप कहिए ना इन्हें कि मुझसे शादी कर लें, मैं वापस नहीं जाना चाहती।
आप इनसे शादी करना चाहती हैं?
हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मुझे अपनी बहू बना लीजिए प्लीज़।
हम इस बारे में सोचेंगे, पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए, डिनर साथ में करेंगे। इतना कहकर उन्होंने बाहर देखकर आवाज़ लगाई, मोहिनी